ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க் யூ. ஓம் நம சிவாய.
900 वर्ष तक तो मुसलमानों ने राज्य किया और हमारे सारे वैदिक संपदा को उन्होंने नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़कर फेंका, साहित्य संपदाओं को आग लगाकर जला दी। एक वर्ष दो वर्ष नहीं, 900 वर्ष इतिहास है मुगल साम्राज्य, मुस्लिमों का साम्राज्य तहस नहस कर दिया। और लगभग 200 वर्ष क्रिश्चियनों ने राज्य कर दी, तब बड़ा मुश्किल से भारत के सपूत वीर स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। कुछ कोई लंगोटी के भार पर आंदोलन किया, किसी ने महात्मा गांधी जैसे लंगोटी के भार पर आंदोलन करने लग गए, सुसंगठित हुए, त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने साम्राज्य प्राप्त किया। अभी भी इन नेताओं के चरित्रों को देखते हैं तो डर लगने लगता है कि किस दिन फिर वो देश ने वो दुर्गति फिर देखने को मिलेगा, डर लगने लगता है। इनका चरित्रगत ढंग का नहीं है, तो ये इतिहास साक्षी है। तो राजा को बहुत सावधान होना पड़ता है। बाबा रूपक है उस राजा, एक राजा सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्ति के लिए वह क्या नहीं करता। इसी तरह एक भक्त को सुस्थिर राज्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उसको सुस्थिर राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भौतिक राज्य लक्ष्मी और आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी, यही तो अंतर है। भक्त की राज्य लक्ष्मी आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी है। भक्त भौतिक राज्य लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं रखता, उसको आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी चाहिए। लेकिन चाहे आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी प्राप्त करनी हो चाहे भौतिक राज्य, शत्रु को तो जीतना पड़ेगा पड़ेगा। ये बात इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। मुझे लगता है भगवान शंकराचार्य जी जिस समय इस श्लोक की रचना करते हैं, भगवान सर्वज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण गीता में अपने प्रिय सखा, प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हैं। कामे सक्रोधे स रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्यनम इह वैरिणम। ये अर्जुन तुम्हारे जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रु दुशासन दुर्योधन आदि हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े शत्रु नहीं है। दुशासन दुर्योधन आदियों से तुमको जितनी ज्यादा खतरा नहीं है जितनी कि तुम्हारे अंदर शत्रु बैठे, उनसे ज्यादा खतरा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते, ये तुम्हारे जो शत्रु हैं तुम्हारे इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में आश्रय लेकर बैठे हुए हैं और तुम्हारे घात लगाकर तुम्हारे साम्राज्य को छीनना चाहते हैं। और ये शत्रु यदि प्रबल होंगे, इन पर तुम विजयश्री प्राप्त नहीं करोगे तो ये तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे, तुम्हारे साम्राज्य रूपी जीवन को, जीवन रूपी साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे। तस्मात्म इंद्रियान्यादो नियम्य भरतर्षभ, इसलिए हे अर्जुन शत्रु को जीतना हो तो शत्रु के बेस कैंप का पता लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे हवा में गोली चलाकर शत्रु परास्त नहीं होंगे, समझे? नहीं, हवा में गोली चलाकर शत्रु परास्त होंगे। शत्रु जहां रहकर योजना बना रहे हैं उस ठिकाने का तहस नहस करना चाहिए, उस ठिकाने को अपने कब्जे में लो, तब शत्रु कमजोर होंगे। महाराज कौन से ठिकाना है, कहां रहते हैं ये शत्रु? इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम है, तीन ठिकाने हैं इनके, बाहर इंद्रियों ठिकाना, इंद्रियों में रहकर तुम्हें घात करते हैं, उससे अंदर मन में रहकर तुम्हारा घात करते हैं ये, उसके अंदर बुद्धि में रहकर तुम्हारा घात करते हैं। कैसे घात करते हैं महाराज? इनके घात करने के सिस्टम गीता में बहुत सुंदर ढंग से प्रक्रियागत बता दिया है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। ये देखो उनके घात करने के सिस्टम क्या है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर गंधा निवासयात बाहुर नाव मीमाम वसा। ये उनके घात करने की प्रक्रिया है। ये शत्रु पहले तो इंद्रियों को विषय में भेज देंगे, और जब विषय के प्रति इंद्रियां पूरी तरह आसक्त हो जाएंगे तो इंद्रिय के पीछे पीछे मन भी जाएगा, और मन के पीछे पीछे बुद्धि भी जाएगी। जब इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों विषय में लग जाएंगे तो ये काम और क्रोध रूपी शत्रु आत्मा रूपी राजा को उसी के साथ खींचकर विषय में ले जाकर फंसा देंगे। और आत्मा रूपी राजा मैं विषय में फंस गया कि ये बोध उसको नहीं हो पाता है। आह क्या मजा आ गया है, बारिश हो रही हो, कॉफी और गरम गरम पकौड़ा खाते समय में यही कहेगा कि क्या मजा आ गया है, और दो पकौड़े की जगह चार पकौड़े खा गया, चार की जगह आठ खा गया, मजा आ गया। और शत्रु कहता है इसी के लिए तो ये सब तैयारी किया है मूर्ख, इसी के लिए तो ये तैयारी किया है। अब जब गरम कॉफी और चार के जगह आठ पकोड़े खा गया, तेल भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, नमक भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कॉफी भी है उसमें जो कैफीन होता है कॉफी में वो भी हाई प्रेशर के लिए है, ये सब वातावरण तैयार किया किसने? काम ने। इसको पछाड़ना है, दूसरे उपाय से तो पछाड़ नहीं पाएंगे, इस तरह पछाड़ देंगे। तब खाने के बाद टर्न खाया तो दूसरे दिन सिर नहीं उठा पा रहा है। क्या हुआ महाराज है? क्या करें, चक्कर आ रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो पहुंच गया डॉक्टर के यहां, महाराज डॉक्टर ने जब आला लगाकर देखी प्रेशर हाई हो चुका है। अरे तुम्हारा प्रेशर ज्यादा है, कम करो। क्या खाया था कल? पूछेगा डॉक्टर। अब क्या बताओगे? नहीं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कल थोड़ा बारिश ज्यादा भीज गया था, घर में जो है पकौड़े थे तो कॉफी और पकौड़े खाने की इच्छा हुई, थोड़ा दो चार पकौड़े ज्यादा ही खा लिया था। फंस गए भाई है? अब न जप कर पाओगे, न तप कर पाओगे, न पूजा कर पाओगे, न पाठ कर पाओगे, पछाड़ दिया ना। है? परास्त कर दिया ना। ये देख लो, पहले तो शत्रु क्या है ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु रहते कहां हैं ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु किस तरह काम करके हमको परास्त करते हैं उस सिस्टम को भी जानना जरूरी है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को तुम जानोगे तब तो इन शत्रुओं को जीतने में तुम सक्षम होगे, अन्यथा जीवन तो कितनी जीवन हमारा इसी तरह परास्त होकर बर्बाद हुआ है। यदि बर्बाद न होता तो आज तक जीव बनकर न भटकते, जीवन सार्थक होता तो अभी तक जीव बनकर भटकना पड़ता है। बड़ा सुंदर एक श्लोक रूपक के रूप में है, आरूढ़ भक्ति गुण, गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी डोरी, समझे नहीं? गुण शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में रस्सी डोरी, हाँ। अब चाप शब्द का अर्थ होता है धनु, समझे नहीं? धनुष, धनुष बाण, और उस धनुष में डोरी रस्सी चढ़ाई जाती है। कैसे डोरी? बोले आरूढ़ डोरी, आरूढ़ गुण कुंचित। जब डोरी कसी जाती है तब धनुष बैंड होकर झुकता है, और डोरी खोल दो तो वह सीधा ही रहता है लकड़ी की तरह, डंडे की तरह। जब एक छड़े में डोरी बांधो जोर से और दूसरे कोने में, दोनों कोने को डोरी से कसोगे तो वह बैंड होकर वो डंडा धनु झुकेगा। राजा लोग या फिर योद्धा लोग जब लड़ने के लिए तैयार होकर चलते हैं तो सबसे पहले प्रत्यंचा डोरी चढ़ाते हैं, और जब विश्राम होता है तो डोरी खोल के रखते हैं। जब युद्ध विराम होता है ना तो सेना लोग डोरी खोल देते हैं, निकाल देते हैं, और जब युद्ध में जाने की तैयारी करनी होती है तो फिर डोरी चढ़ाते हैं, बांधते हैं, कसते हैं। तो तैयारी पूर्वक अवस्था को यहां आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भावचापम, भावना रूपी धनुष बाण, भावना माने ध्यान, ध्यान रूपी धनुष में भक्ति रूपी डोरी चढ़ा दिया गया है। ये शत्रु जीतने की तैयारी है, ध्यान देना, क्योंकि शत्रु जीतना है हमें। शत्रु क्यों जीतना है? सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्त करना है। शत्रुओं ने जब तक शत्रुओं को नहीं जीतेंगे तब तक हमारी राज्य लक्ष्मी सुस्थिर नहीं होगी। ये दिखावा जो भक्ति से तुम्हारी मुक्ति नित्य नहीं होगी है, यहां तो नित्य मुक्ति मुक्त चाहिए, नित्य मुक्तता, अन्यथा तुम मुक्त भी होगे तो फिर जय विजय की तरह पतित होना पड़ेगा, नित्य नहीं होगा ना वो मुक्ति, वहां पर भी कुछ न कुछ गलती करोगे, सुस्थिर न होकर अस्थिर होगे। क्या था मुक्ति अस्थिर होने में हेतु क्या था? द्वैत दृष्टि, प्रसंग आप लोगों ने सुना है कई बार, भेद बुद्धि, भगवान के अनन्य सेवक जय विजय द्वारपाल हो गए, सामीप्य मुक्ति प्राप्त किया, सालोक्य नहीं, सामीप्य और ज्यादा महत्वपूर्ण है। सालोक्य का मतलब होता है भारत के किसी कोने में तुम पैदा हो जाओ तो ये सालोक्य हो गया, नहीं ना? सामीप्य हो गया, अरे भाई राष्ट्रपति के आसपास में कहीं घर बना के रह गए, है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास में है, और इसलिए सामीप्य हो गया, उनकी सामीप्यता। इसी तरह वैकुंठ इतना विशाल लोक है, उस किसी लोक के वैकुंठ के किसी कोने में पैदा होना तो सालोक्य हो गया, लेकिन भगवान नारायण के नजदीक ही तुमको कुटिया बनाने को मिल जाए, हैं? क्या गौरव है, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, देख लो। सायुज्य का मतलब होता है उसके काम में आना, उसके सेवक बनना, उससे अभिन्न होकर रहना, समझे कि नहीं? सायुज्य, सामीप्य और सायुज्य में बड़ा अंतर है। सामीप्य वाला अंतरंग में नहीं जा सकता है, बहिरंग में रह सकता है, बाह्य कक्ष में रहेगा लेकिन अंतरंग नहीं जाएगा, समझे कि नहीं? बोलो। तुम्हारा मोटरसाइकिल तुम्हारे बेडरूम में जा सकता है, हैं? बोलो, जा सकता है बेडरूम में मोटरसाइकिल? लेकिन तुम्हारा चश्मा बेडरूम में जा सकता है कि नहीं? तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारा चश्मा जा सकता है कि नहीं, बोलो? अंतरंग हो गया ना, मोटरसाइकिल बहिरंग हो गया। भक्तों की ऐसी कैटेगरी वैष्णवों ने स्वीकार की है। कुछ मुक्ति ऐसे है कि उसके लोक में जन्म ले पहुंच गए तो वही मुक्ति है, बड़ा आनंद है वो लोक में। लोक में नहीं है, उससे और ज्यादा कृपा हो गई है उसके महल में आसपास में, और उससे और ज्यादा मिल गई तो सामीप्य और नजदीक, उससे और कृपा हो गई तो बस सारूप्य। जब तक सारूप्य भक्ति नहीं मिलती है तब तक जो है वह सुस्थिर राजलक्ष्मी नहीं होता है, सुस्थिर नहीं होता वह मुक्ति, सुस्थिर नहीं होता। अब यह प्रसंग यहां भगवान शंकराचार्य जी भक्त शत्रु को जीतकर अपना साम्राज्य प्राप्त करना है उसके लिए साधन दो वस्तु को साधन के रूप में प्रयोग किया, भावना को चाप के रूप में, भावना माने ध्यान, को धनुष बाण के रूप में, और दृढ़ भक्ति को मजबूत रस्सी के रूप में। वो रस्सी से युद्ध नहीं जीता जा सकता जिस रस्सी से धनुष बाण को तैयार किया और तीर चढ़ाकर जब खींचते ही टूट जाए, वो तो कमजोर रस्सी है, और तीर छोड़ने से पहले तार खींचना पड़ेगा, खींचते ही रस्सी टूट जाए तो लक्ष्य भेदन नहीं कर पाएगा ना। तो डोरी कैसी चाहिए कि बोले सुदृढ़, आरूढ़ भक्ति, गुण कुंचित, कुंचित माने खींचना, गुण माने रस्सी, भक्ति को रस्सी बनाओ, भावचाप युक्त ही। तो हो गया धनुष तैयार, डोरी और धनुष को, बाण को, धनुष को चढ़ा दी तो धनुष तो तैयार हो गया, तो बाण क्या है भाई? अब तीर चाहिए कि नहीं? धनुष तो हो गया, लक्ष्य भेदन तो धनुष नहीं करेगा ना, लक्ष्य भेदन तो तीर बाण, धनुष बाण बोलते हैं ना, तो बाण चाहिए कि नहीं? तीर चाहिए। क्या है तीर? शिवस्मरण, नित्य निरंतर शिव का स्मरण ही शिव भक्ति। रस्सी है, शिव ध्यान धनु है, और शिव स्मरण क्या है? बाण है। शिवस्मरण बाण गणे ही, धनुष एक हो तो भी चलेगा, तीर एक से काम नहीं चलता, तीर ज्यादा चाहिए, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया है। शिव स्मरण बार बार करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा, बार बार शिव स्मरण करो, कभी भूलना नहीं, कभी विस्मरण न हो, इसी को आसुप्तेरामृते कालम नयत वेदांत चिंतया। सोते समय भी स्मरण करो, जगते समय भी स्मरण करो, चलते समय भी स्मरण करो, बैठते समय भी स्मरण करो, तो यही हो गए बाण, शिव स्मरण बाण। कैसे बोले? अमोघई, शिव स्मरण ऐसा करो कि वह व्यर्थ न जाए। शिव स्मरण को मनोरंजन नहीं मान लेना, वो अमोघई शब्द से यह शिव स्मरण मनोरंजन नहीं मानना, अमोघई वो तो जीवन के कष्ट से कष्टतम अवस्था में भी उसको नहीं छोड़ना है, तभी जो शिव स्मरण अमोघ बाण होगा। अमोघ बाण का अर्थ होता है लक्ष्य भेदन करने के बाद वह लक्ष्य को भेदन किए बिना व्यर्थ न जाए। धनुष में चढ़ाकर जब उसका भेदन करते हैं तो लक्ष्य भेदन न किए बिना वह बेकार नहीं जाता, उसको अमोघ बोलते हैं। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप युक्त ही शिवस्मरण बाण गणेर मोघई। महाराज, तुम्हारी तैयारी तो ऐसी है कि बड़े भारी शत्रुओं से लड़ना है। बोले हां, निर्जित्य किल विष रिपुन, किल विष ही रिपु है तुम्हारे, किल विष माने पाप, पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है बोलो? देखो, भक्ति सिद्धांत में तुम जो कह रहे हो वो बड़ा पाप हो सकता है, ज्ञान सिद्धांत में भगवान को भूल जाना पाप नहीं है, ध्यान देना। ज्ञान सिद्धांत में सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने को भूल जाना, भगवान को भूल जाना इतने ज्यादा घातक नहीं है, नुकसान नहीं है, अपने को खुद को भूल जाना सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। को हम ये तुमको ही पता नहीं है, अपने ही बारे में तुमको जानकारी नहीं है, और सनस सुजातीय दर्शन में तो भगवान सनस सुजात ने धृतराष्ट्र को कहा किम तेन न कृतम पापम, ये सनस सुजातीय दर्शन का श्लोक है, किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहारिण, उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया दुनिया में, जीवन में, किस चोर ने? आत्मा अपहरण, अनात्मा शरीर को आत्मा मान लिया, अनात्मा प्राण को आत्मा मान लिया, अनात्मा इंद्रियों को आत्मा मान लिया, अनात्मा मन बुद्धियों को आत्मा मान लिया, इससे बढ़कर किम तेन न कृतम पापम। सबसे बड़ा पाप तो यही है, और जो पाप है वो तो बहुत क्षुद्र पाप हैं, बच्चे कच्चे हैं पाप के। सबसे बड़ा पाप तो यहीं से शुरू होता है। अकर्ता को कर्ता बता देना, अभोक्ता को भोक्ता बता देना, ज्ञान स्वरूप को अज्ञानी मान लेना, अजन्मा को सजन्मा मानना, ये कम पाप है? ये कोई छोटे मोटे पाप हैं? ये उसी के तरफ यह संकेत कर रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य। किल विषय रिपुन, पाप ही शत्रु है। हमारा शत्रु हमारे ही पाप। अब पाप को पैदा किया किसने, बोलो? पाप के बाप कौन है? तुम खुद हो। अध्यात्म में दूसरे के पाप दूसरों को कष्ट नहीं देता। मेरा पाप तुमको कष्ट देने जाएगा, बोलो? मैंने जो पाप की है, मेरा पाप तुमको कष्ट देने के लिए नहीं जाएगा। तुमको कष्ट कौन देता है? तो तुम्हारा ही पाप, तुमने जो की है वो पाप है। इसलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, कहते हैं पुरुषोत्तम महीना शुरू हो गया वर्षों से, अब तुम यदि कोई यदि कहे कि मैं एक टाणो खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा, नित्य गंगा स्नान करूंगा, चलो नित्य न करो तो 21 तारीख को तो कर लो नर्मदा स्नान। 21 तारीख को नर्मदा स्नान में जा रहे हैं ना कुछ लोग, हाँ, सुना है? तो कोई नियम बना लेता है कि रोज सुबह 4 बजे उठना है, और 4 बजे उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 3 घंटा मुझे रोज जप करना है, समझे? 4 बजे उठकर जप शुरू करेगा तो कब तक? 7 बजे तक। 7 बजे तक जप करो, फिर 7:30 बजे प्रेमपुरी आश्रम में आ जाओ, ठीक है कि नहीं, बोलो? करना क्या है और तुमने, बोलो? सुबह सुबह करना क्या है? 4 बजे उठो, पट्टा ना धोकर आसन लगा के बैठ जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जब शुरू कर दो। जब तुम ऐसा संकल्प करते हो, निश्चय करते हो, शाम को 4 बजे उठने का संकल्प करके अलार्म लगाकर सोते हो, तो ये पता चल जाता है किसको, ये तुम्हारे संकल्प का पता किसको चलता है? तुम्हारे पापों को, पापों को पता लग जाता है। ये षड्यंत्र कर रहा है, 4 बजे उठूंगा कहता है, स्नान करूंगा कहता है, जप करूंगा कहता है। मर गए भाई, अब तो हम तो मर गए, बिना मौत मर गए। कौन? पाप। तब वो लोग तुम तो सो जाते हो संकल्प करके वो मीटिंग करने लगते हैं। ये सच्ची बात है, मैंने गप नहीं किया है, महाभारत में स्पष्ट लिखा है। तब वे लोग मीटिंग करने लग जाते हैं कि इसको इसके संकल्प अनुसार इसकी योजना के अनुसार काम करने नहीं देना है, नहीं तो हमारा सत्यानाश करेगा, ये हम तो मर जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा ये। तब क्या करना है? तो एक बोलता है, मुझे आइडिया आ गया भाई। क्या? जब वो अलार्म लगाकर सिरहाने में रखेगा घड़ी, जब घड़ी का अलार्म बजेगा तो उसके हाथ में जाकर मैं बैठूं और फट वो अलार्म को बंद करने के लिए उसके हाथ को मैं चला दूंगा, चिंता नहीं करो। तो वो हाथ में बैठता है, कहते हैं ठीक 4 बजे के आसपास में आकर हाथ में बैठ जाता है योजना बनाकर। तो प्रे अलार्म बज गया, टू 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 टू, सोए सोए हाथ बंद करके फिर रजाई ताल ली। क्या मजा, पाप बड़े खुश हो जाते, वास शाबाश है, तुमने काम की बेटा, अब आराम से बैठेंगे भाई। और 7 बजे के प्रेमपुरी जाने की जगह 9 बजे तक सो गया। राज किसका हुआ बोलो? पापों का राज हुआ कि नहीं? जीत गए कौन? ये दृष्टांत से तुम, ये महाभारत में स्पष्ट लिखा है, करते यही है कौन? तुम्हारे किलबिश, तुम्हारे पाप षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि ये नियम बनाकर करने लग जाएगा तो हमारा तो नाश हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो बड़ी सावधानी, दृढ़ता चाहिए हो, छोटे मोटे हथियार से इनसे लड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बड़े दृढ़ हथियार की तैयारी कर रहे हैं।